समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। जनगणना हमारे देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है, इसलिए इसे समय समय पर आयोजित किया जाता है ताकि नीतियां सही ढंग से बनाई और लागू की जा सके। जनगणना 2027 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी तरह डिजिटल है और पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा प्रदान की गई है। ये जनगणना दो चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण फिलहाल चल रहा है और नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। स्वगणना क्या है, ये कैसे काम करती है, इन्हीं पहलुओं पर आज हम अपने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का विषय है जनगणना 2027 स्वगणना कैसे करें। श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हम लगभग 14 दिन पहले भी जनगणना पर चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा सके। और हमारे साथ इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत के महापंजीयक कार्यालय के उप महानिदेशक बिस्वजीत दास जी। नमस्कार दास जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी।
श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप हमारे स्टूडियो नंबर 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और एक और नंबर है 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। याद रखिए दिल्ली का जो कोड है 011 डायल करना न भूले नंबर डायल करने से पहले। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो श्रोताओं, आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। दास जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जनगणना 2027 में पहली बार स्वगणना की सुविधा दी गई है, तो ये क्या है और इसमें किस तरह की जानकारी देनी होती है।
थैंक यू। जनगणना में पहली बार डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है
जी।
इसके लिए एक स्वगणना का भी सुविधा भी दिया है, ये अतिरिक्त तो सुविधा है। इसकी ऐसा एक पद्धति है जिसमें रेस्पोंडेंट्स अपने आप ही सेंसस डेटा भर सकता है। इसके लिए उनको एक हमारा ऑफिशियल पोर्टल है, इसका ये URL है c.census.gov.in। उसके अंदर आपको आना पड़ेगा, उसके अंदर जाके आपको अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर जरिए आप उसमें OTP आएगा, उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन भर पाएंगे।
जी हाँ, तो आपने जो आप बताया है पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर आप अपना जो सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हम और भी बातचीत करेंगे, सबसे पहले अपने श्रोता से बात कर रहे हैं दिल्ली से धर्मवीर जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार धर्मवीर जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार जी मैडम जी, मैं धर्मवीर बनेरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
नमस्कार जी,
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जनगणना अधिकारी आता है घर और घर में कोई सीनियर नहीं है तो वो बोलता है कि आप बाद में इसको करें, तो ऐसा करेंगे? पहला इसका सवाल। अभी बीच में पिछले महीने एक दूसरे क्षेत्र में जनगणना अधिकारी आए थे, उन्होंने उस फैमिली को ये बोला कि आप 2002 का अपने DLO से पोर्टल लिस्ट निकलवाइए, उसमें देखिए। तो ये क्या हम लोग ही DLO से निकलवाएंगे, क्या आपकी ड्यूटी नहीं है ये जो हमसे उस क्षेत्र के निवासी से बोला गया? फिर उनके बच्चे ने फिर अपने मोबाइल के नेट से उसमें चेक किया, तब जाके उन्होंने खुद मेहनत करी, उनको तब जाके निकाल के दिया। और इसके लिए एक सवाल तीसरा मेरा ये भी है, जैसे मकानों की होगी, अगर आज मकान हमारा 70 साल पुराना है तो कल हम उसको नया बनाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, उसमें जनगणना में क्या क्या आएगा?
जी
थैंक यू धर्मवर जी, आप कहाँ रहते हैं जी?
डिस्कनेक्ट हो गए, दिल्ली से ही हैं ये।
दिल्ली से जी। अच्छा, एक तो अभी तक जनगणना अधिकारी किसी का घर में गया नहीं है, अभी सगणना चल रहे हैं, 15 तारीख तक सगणना चलेगा, जो जहाँ 1 तारीख शुरू हुआ था अप्रैल में, अभी 16 तारीख से उस एरिया में एन्यूमरेटर्स आएंगे, तो और एडमिटर्स के लिए किसी को आपका कोई इन्फॉर्मेशन कोई पेपर्स देने का जरूरत नहीं है, जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे वही दर्ज करेंगे।
जी हाँ, और जैसे उन्होंने एक पूछा है कि अगर घर में कोई सीनियर नहीं है, कोई बच्चे हैं, तो अगर एनुमरेटर्स आते हैं जब 16 अप्रैल से शुरू होनी है, तो ऐसे में क्या किया जा सके?
तो उसमें जो बच्चे उसको जानकारी लेके वो भर लेंगे एनुमरेटर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और जैसे उन्होंने कहा कि अगर हमारा 70 साल पुराना मकान है और नया मकान बनाना है, तो उसमें भी कुछ पेच आएंगे या कर सकते हैं अपने निर्माण प्रक्रिया शुरू?
इसमें जो हमारा जो फेज वन के लिए जो मकान सूचीकरण और मकान गणना का इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, तो इसमें उसी डेट में जिस डेट में एनुमरेटर आएंगे उस डेट में मकान का स्थिति क्या है, उसका फ्लोर क्या है, उसका वॉल्स क्या है, उसका छत क्या है, उसका मटेरियल क्या है, ये इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। उसके लिए जब घर बनाएंगे तब अगर जनगणना होती है तो उसी टाइम में वो इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा।
जी, तो पहले चरण में जो फिलहाल जो चल रही है उसमें मकान की जो गणना है उसका सूचीकरण किया जा रहा है और उससे संबंधित जानकारी ली जा रही है। तो जैसा दास जी ने बताया कि जिस समय जो भी स्थिति में होगा आपका मकान, तो वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन दर्ज की जा सकेगी। एक और हमारे श्रोता जुड़े हैं हरिद्वार से, रवि जवालिया जी। रवि जी,
जी नमस्कार। मैम जी
नमस्कार,
मेरा भी जवालिया गढ़मीलपुर हरिद्वार से, और महानुभाव को भी नमस्कार जी।
जी
नमस्कार नमस्कार जी।
हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं आशा भोसले जी जो आज पंचतत्व में विलीन हुई है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी।
जी
हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वगणना में क्या मतलब प्रोसीजर होता है, और मतलब स्वगणना की से हम क्या समझे, एक आम आदमी क्या समझे स्वगणना से, मैं यही जानना चाहता हूँ जी।
थैंक यू रवि जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आप। स्वगणना जाने की आप खुद ही गणना कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा एक पोर्टल है जो ऑनलाइन सिस्टम है ac.census.gov.in, उसके अंदर आना पड़ेगा। आप चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य कर सकता है उसमें, उसके लिए चाहिए आवेदन तो मोबाइल के जरिए करिए कि कंप्यूटर के लैपटॉप के जरिए कर सकते हैं। उसके लिए एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक मोबाइल नंबर फोन चाहिए जिसमें उसका ओटीपी आएगा, उसके जरिए आप इन्फॉर्मेशन भर सकता है।
जी जैसे विश्वजीत जी, जैसे जो हमारे पहले श्रोता का था कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया क्षेत्र में हमारे आ गए और वोटर आईडी कार्ड पूछने लगे, तो अगर आपके घर में एनुमरेटर गणनक आ रहा है तो आपको कैसे पहचान उनको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो आपको अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे तो आप उनके सवाल से पहले आप उनका आईडी कार्ड चेक करें, कुछ ऐसी चीज होगी जिससे आप पुष्टि कर सके कि यही सही एनुमरेटर है?
बिल्कुल प्रियंका जी, आप सही बात कही है। जब इन्वर्टर आएंगे उसका आप अपॉइंटमेंट लेटर चेक करिए, उसका आईडी चेक करिए, उसका जो अधिक उसको सब डिस्ट्रिक्ट से जो दिया जाता है चार्ज लेवल में उसका स्टैंप होगा, उसका दस्तखत होगा, उसमें से आप पहचान किया जा सकता है
जी। तो वो कोई दस्तावेज आपसे नहीं मांगेंगे, सिर्फ जो 33 प्रश्न अधिसूचित हैं उसी के जो सवाल है संबंधित सवाल है वही पूछेंगे। एक और श्रोता जुड़े हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत झाकड़े जी। हेलो श्रीकांत जी।
हेलो
जी नमस्कार।
नमस्कार,
आपका सवाल क्या है?
मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। मेरा सवाल ये है कि मैं जो दृष्टिहीन हूँ तो मैं जो वृद्धाश्रम में रहता हूँ
जी,
तो मतलब हमारा नाम किस तरह का शामिल हो सकता है ये जनगणना में, कारण मतलब यहाँ कोई हम परमानेंट तो कोई नहीं रहते ना इसके लिए।
तो खैर इनका, क्योंकि वो दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो उनका नाम जनगणना में दर्ज किया जा सकता है?
बिल्कुल, हम उसको इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड कहते हैं, उसमें वो आएंगे और उसमें वो इन्फॉर्मेशन जो एडमिनेटर जब आएंगे उसमें इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। कोई हम यकीन दिलाते हैं हम किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, सबका इन्फॉर्मेशन लेंगे, जनगणना में इन्फॉर्मेशन सबको लिया जाता है, पूरा कंट्री का लिया जाता है। ये हमारा अलग प्रयास रहते हैं, हम कोई ना छूटे एक्सरसाइज से।
अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे पहली बार ये सेल्फ एनुमरेशन स्वगणना हो रही है, तो ये पारंपरिक जो जनगणना है उससे कैसे अलग है?
देखो 2011 तक हम पारंपरिक जो जनगणना होता था उसमें अब पेपर शेड्यूल हुआ करता था, एनुमरेटर सब पेपर शेड्यूल लेकर जाते थे, उसमें इन्फॉर्मेशन भरते थे, देन उसको जो चार्ज लेवल ऑफिसर होता जैसा तहसीलदार मामलतदार ऑफिस में उसको जमा करते थे, फिर वहां से वो पेपर शेड्यूल पोस्ट के जरिए हमारा जो डेटा सेंटर में भेजा जाता था, उस डेटा सेंटर में उसको स्कैनिंग किया जाता था
जी।
लास्ट सेंसस में 2011 सेंसस में करीबन 18 महीना लगा था पूरा जो पेपर शेड्यूल था उसका स्कैन करने के लिए
जी।
और स्कैन करने के बाद डाटा आप क्वालिटी चेक करेंगे, फिर आप उसका डाटा वापस कर पाएंगे।
तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी, तो स्वगणना से और डिजिटल होने से बहुत चीजें बदली।
मैं एक चीज बता दूं, उसमें 2011 सेंसस में करीबन 2 से 8 साल तक लगा था उसको पूरा डाटा पब्लिश अच्छा। करने के लिए जो लास्ट डेटा जो माइग्रेशन डेटा हम 2019 में पब्लिश कर पाए थे।
तो इस बार कब तक उम्मीद है कि
हम जितना जल्दी हो सके हम उस डेटा पब्लिश करने के प्रयास करेंगे।
जी, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन जी।
जी नमस्ते मैम, मैं विपिन कटारे मध्य प्रदेश सागर से बात कर रहा हूँ।
स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
जी शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि जो जनगणना अभी शुरू हुई है 2002 चरणों में हो रही है, 2026 में भी होनी है और जो और 2027 में दूसरा चरण 20 का होगा, तो ये जानना चाह रहा था कि जो अभी जो मकानों की जानकारी ली जाएगी तो जो 35 सवाल बताए जा रहे हैं कि जिसमें शामिल किए गए हैं, तो वो इस बार ही होंगे या फिर वो अगले चरण में भी होंगे कुछ सवाल या इसी में है, और जो हम रहते हैं क्या उसी एड्रेस की जानकारी देनी पड़ेगी या फिर जो हमारा पुराना मकान है या फिर हम जहाँ शुरू से रहते हैं उसी की जानकारी देना आवश्यक रहता है।
थैंक यू विपिन जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। अब मध्य प्रदेश से है, मैं ये बता दूं आपको, मध्य प्रदेश में सेल्फ एनुमरेशन 16 अप्रैल से शुरू होना है और जो एनुमरेटर घर घर जाएंगे वो एक मई से जाएंगे 30 मई तक। इसमें यह आपका जो प्रश्न ये था
कि उनका ये था कि जैसे जो मकानों की जो जानकारी है वो पहले चरण में भी ली जाएगी या दूसरे चरण में भी ली जाएगी।
थैंक यू मैडम, इसमें पहले चरण में तो मकान सच्चीकरण और मकान की गणना का प्रश्न लिया जाएगा, उसमें ओनली जो हाउस होल्डर रहता है उसका डिटेल्स जानकारी होता है, उसमें प्रत्येक मेंबर का जानकारी नहीं लिया जाता है। वो हम सेकंड फेज में लेंगे, जब हम फरवरी में दोबारा जाएंगे तब सारे प्रत्येक व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन हम लेंगे उसमें, और उसमें क्वेश्चन अलग होगा।
जी, और जैसे जो उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान में वो किसी और मकान में रह रहे हैं और तो उनको जो इसमें मकानों के जो सूचीकरण की बात कही गई है तो उनको अपने पुराने मकान का देना होगा या जो फिलहाल मकान में रह रही
है। इसमें हम बोलते हैं जो सामान्य रूप से जहाँ रह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देना है, और अगर अगर एनुमरेटर जब जाएंगे उसको सारे मकान का वो लिस्टिंग करेंगे
सारे मकान की। हाँ। अगर फिलहाल अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई दिल्ली में रह रहा है और गुड़गांव में शिफ्ट हो गया किराए पे, दिल्ली में अपना मकान है, तो वो उसको अपने जो मकानों की जो सूचीकरण गणना करवानी है तो वो किस मकान का दर्ज कराए।
अगर वो सामान्य रूप से मैं दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में उसको जनगणना करानी है, और उसका जो गुड़गांव का जो मकान है उसको अगर वैकेंट है तो वैकेंट हम लिस्टिंग करेंगे जब उस एरिया का जब एनुमरेटर जाएंगे।
किराए पे अगर रह रहा है तो
उसके लिए भी क्वेश्चन है जो आपका जो ओनरशिप मकान की क्या है,
अच्छा
ओन्ड है कि किराया है, और आधार किसी जगह में आपका मकान है कि किराए में है, आपका किसी दूसरे जगह में मकान नहीं है, तो उसका अलग अलग कोड है।
जी, एक और श्रोता जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी। नमस्कार।
नमस्कार
जी,
मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो जन 2027 स्वगणना का शब्द, तो व्यक्ति जो अनपढ़ है देहात क्षेत्र से है वो कैसे ये करेंगे।
जी हाँ, जो खुद जानकारी नहीं दे सकते अपनी डिजिटल है तो वो कैसे दर्ज कराएं।
रमा शंकर जी नमस्कार, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। तो अब मैं आपको आपका जानकारी के लिए बता दूं कि आप स्वगणना कोई आवश्यक चीज नहीं है, जो स्वगणना कर सकते हैं वो कर ले, अगर नहीं कर पाए तो एनुमरेटर जैसा आप पहले पिछले जनगणना में गए थे इस बार भी आएंगे, आपसे पूरा जानकारी लेंगे। अगर आपका मकान कभी लॉक्ड भी रहता है कभी बंद रहता है दोबारा जाएंगे वो 30 दिन के भीतर इन्फॉर्मेशन आपसे जानकारी इकट्ठा करेंगे।
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्वगणना कर सकते हैं तो और अच्छा है, और अगर नहीं कर सकते तो जो गणनक है वो आपके द्वार आएंगे और आपसे जानकारी एकत्र करेंगे। हरियाणा से जुड़े हैं संजीव जी।
जी नमस्कार जी, आप सभी को
नमस्कार
जी। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, गाँव खोखनिया डिस्ट्रिक्ट करनाल।
हाँ जी।
अच्छा मैडम, मैंने एक दो बार रेडियो पे सुना है प्रोग्राम जो सेंसिस के ऊपर आते हैं ना कि भाई इसको आरटीआई से बाहर रखा जाता है, मतलब सेंसिस को
जी।
तो एक तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि जाति भी लिखी जाएगी क्या किसी भी व्यक्ति की जितनी जनगणना करेंगे, और फिर फाइनली ये भी पब्लिश होता है किस जाति के कितने आदमी है इस देश में, मतलब ये बात है
जी। तो उनका सवाल है कि आरटीआई से बाहर रखा गया है जनगणना को।
हम जो सेंसस किया जाता है इसका जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है, उसमें हमारा एक सेक्शन होता है इसमें बोलता है हम ये जनगणना जो हम डेटा लेते हैं हम उसको पूरा तरफ गोपनीय रखा जाता है, हम किसी में शेयर नहीं किया जाएगा, तो उसको कोर्ट के सामने में एविडेंस की तौर पर भी उसको उपस्थापित नहीं किया जाएगा। इसी कारण में ये इसको हम आरटीआई में भी इसको शेयर नहीं कर पाएंगे
जी। और जो जातिगत जब जनगणना होगी तो वो कह रहे हैं कि उसमें जो जातियां हैं वो भी उसकी जानकारी दी जाएगी, उसका भी डेटा रिलीज किया जाएगा।
हम इंडिविजुअल डेटा तो किसी का हम रिलीज नहीं करते हैं, और जातिगत जनगणना का जो सवाल रही है आपकी वो हम सेकंड फेज में कवर करेंगे, उसको जब क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा हम नोटिफाई करेंगे, किस तरह से इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, कैसे करेंगे, वो सारे डिटेल्स हम अपना सामने रखेंगे।
छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं योगेश जी।
जी नमस्ते।
नमस्ते
जी, हम ये जानना चाहते हैं ये जो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह बता रहे हैं ये क्या जैसे अब यहाँ अलग अलग भाषाएं में निवास करते हैं सब, तो क्या ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है क्या?
जी हाँ
योगेश जी धन्यवाद, अब बहुत अच्छा सवाल पूछे। हमारा जो जनगणना होती है हमारा 16 भाषा में किया जाता है ना, तो इसमें हमारा जो सौगणना इस बार भी रखा उसमें भी 16 भाषा में किया गया है, सारे जो मेन मेन लैंग्वेज है उसमें सारे इसमें उपलब्ध है।
तो आप अपनी जो भाषा देखकर आप उसमें भी स्वगणना कर सकते हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। अगर कोई दिक्कत आए भरते समय तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पर जो हमारे श्रोता है जो कर रहा है सेल्फ एन्यूमरेशन वो सवाल पूछ सके?
हाँ जी मैडम धन्यवाद, हमारा एक सेल्फ लाइन हम पब्लिश किया है
जी,
इसका नंबर है 1855
जी,
तो इसके जरिए कोई भी सवाल आप पूछ सकते। आप जिस एरिया से आप ये फोन करेंगे डायल करेंगे उस एरिया का जो हमारा जो उस स्टेट्स कैपिटल में ऑफिस होता है उसका पास वो फोन जाएगा और वो आपका सवाल का वो जवाब देंगे।
जी हाँ, तो नंबर एक बार नोट कर लीजिए श्रोताओं, 1855 1855 ये हेल्पलाइन नंबर है। महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी।
जी मैम नमस्कार।
नमस्कार
मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, अभी ये जो जनगणना होनी है जो पहले चरण में जो बोला गया है कि पोर्टल पे आप स्वयं आप अपनी जानकारी दे सकते हो, तो इसकी क्या गारंटी मैम कि जो जानकारी देने वाली उसका बाद में कैसे वेरिफिकेशन हो कि जानकारी सही है या गलत है, और ये प्रथम चरण में जो जनगणना अधिकारी होते हैं वो घर पे आएंगे या दूसरे चरण में आएंगे, तो ये इसका जो डिजिटलीकरण जो हो रहा है इसमें किया जा रहा है तो इसमें कितने ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी और कितना यही सवाल है।
जी हाँ, तो अगर जो हम जब सेल्फ एन्यूमरेशन कर रहे हैं जानकारी दे रहे हैं तो उसकी पुष्टि कैसे की जाएगी कि जो दे रहा है व्यक्ति वो सही जानकारी दे रहा है कि नहीं?
एक तो जनगणना जो आप 15 दिन का समय का होता है उसमें, तो उसमें आप जब एंट्री करेंगे तो एक बार सेव करने के बाद आप बार बार चेंज कर सकते हैं जब तक फाइनल सबमिट ना कर दे आप, ठीक है। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगा तब भी कुछ गलतियां रह गया कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप इन्वर्टर अपना पास घर जब आएंगे तो आपसे सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी लेंगे और आईडी लेने के बाद उसको मैच करने के बाद उसको आपका डाटा एक्सेस कर पाएंगे और करने के बाद आपसे वो कन्फर्मेशन लेंगे जो सब सही भरा नहीं भरा कोई दिक्कत रह गया, अगर कुछ रह गया आपका मन में कुछ है ये मैंने गलती कर दी है तो आप दोबारा उसको देख के चेंज करा सकते हैं।
तो वो जो एन्यूमरेटर है वो कैसे पुष्टि करेगा कि जो उन्होंने जानकारी दी है अपनी स्वगणना के समय वो सही है कि नहीं?
देखिए हमारा जो सेंसन सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो जो उसका रेस्पोंडेंट की जो रिप्लाई के आधार पर किया जाता है, ठीक है। हम कोई तो ना तो कागजात देखते हैं ना कोई और डॉक्यूमेंट हम उसको इसके लिए बनाते हैं ना, उसको बस सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन रखा है उसका अपना बेस्ट नॉलेज एंड बिलीव के ऊपर करना होता है, ठीक है, उसको उसका एक जिम्मेदारी बनता है।
तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सही जानकारी दे ताकि ये आगे भविष्य में हम लोगों के ही काम आएगी। उनका जैसे दूसरा सवाल था कि जो एन्यूमरेटर्स हैं वो पहले चरण में भी आएंगे या सिर्फ दूसरे चरण में आएंगे?
एन्यूमरेटर दोनों चरण में जाएंगे, जैसा पहले भी सेंसस में हुआ करता था 2011 में भी हुआ है, ये इस चरण में आएंगे और जब नेक्स्ट टाइम जब सेल्फ ये करेंगे हम डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भरेंगे सारे मेंबर्स का तभी जाएंगे वो
जी।
और दोनों चरण में सेल्फ इन्फॉर्मेशन का प्रावधान रहेगा,
दोनों में आप स्वगणना कर सकते हैं चरणों में। दिल्ली से एक और श्रोता जुड़ी हैं ज्योति सोनी जी। हेलो।
हेलो
जी ज्योति जी
जी, मेरा प्रश्न है कि मतलब क्या संडे को भी आएंगे जनगणना वाले, और दूसरा प्रश्न है कि क्या वो ड्रेस में होंगे या बिना ड्रेस में होंगे, कोई आई कार्ड वाई कार्ड होगा या नहीं होगा उनके पास
जी?
मुझे कैसे पता चलेगा कि वही है?
ज्योति जी आप अच्छे सवाल पूछे हैं। हम जनगणना जब शुरू होता है वो 30 दिन के भीतर करना होता है स्टार्टिंग डेट से, तो वो किसी भी दिन जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना संडे ना सैटरडे, ठीक है, तो उसी में जाएंगे। और दूसरा, जब आप एनुमरेटर्स की प्रगणक आपके पास आएंगे, आप उसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर देख सकते हैं, उसका आईडी कार्ड दे सकते हैं, वो कंसर्न अधिकारी का उसमें स्टैंप होता है, दस्तखत होता है।
तो आप जब आपके घर में आए तो आप उनका आईडी कार्ड चेक कर लें, और उनके पास स्टैंप लगी होगी जो ऑफिशियल स्टैंप है, तो आप उसको चेक कर लें और फिर अपनी जानकारी उनको दें। और हमारे श्रोता जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बसंती लाल जी।
हेलो, नमस्कार जी।
नमस्कार,
मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। मैम
जी, सवाल पूछे।
मेरा ये सवाल है कि जैसे जनगणना होती है तो इसमें कोई ना कोई नागरिक छूट जाता है ना सर, तो मैं क्या करना चाहिए जो छूटे नहीं?
बसंत जी, बहुत अच्छे सवाल पूछे। हमारा कोशिश वाला जो रहता है कोई ना छूटे है, इसलिए जो हमारा जो प्रगणक जाते हैं हम उसको छोटा छोटा एरिया बांट देते हैं, सारा पूरा कंट्री को छोटा छोटा एरिया में हम डिवाइड करते हैं, फिर एक प्रगणक को हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सबका घर घर में जाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर किसी का अगर कोई उस दिन नहीं है तो बाद में भी जाएगा, तो 30 दिन के भीतर करना होता है उसको, और वो बार बार जा सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की अलग प्रयास रहता है
जी। तो पूरी तरह से डटकर और बहुत समझ बूझ के साथ ये प्रक्रिया की जाती है। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं राशिद अहमद खान जी।
नमस्ते मैम।
नमस्कार,
मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
जी। सर्वप्रथम
आशा भोसले जी को आकाशवाणी परिवार तथा सभी श्रोताओं की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि
जी।
जी, मेरा निवेदन ये है कि क्या जो डाटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं जनगणना के अंतर्गत, ये गोपनीय रखा जाएगा या आरटीआई के तहत इसकी कोई जानकारी ली जा सकती है, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
दास जी, हम अपने अपने बारे में, अपने घर के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी दे रहे हैं, तो ये क्या गोपनीय रहेगी, इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा? यही सबका
रसी जी, धन्यवाद ये आपका क्वेश्चन करने के लिए। मैं यकीन दिलाता हूँ ये पूरी तरफ से गोपनीय होता है, हम कभी इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं करता है। आप जैसा पुराना जनगणना में कभी देखा क्या आपका इन्फॉर्मेशन पब्लिश किया है कहीं?
तो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। हमारे एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से, राजीव जी। नमस्कार राजीव जी।
नमस्कार,
आपका सवाल क्या है?
मैं सर को भी नमस्कार करता हूँ।
नमस्कार जी।
सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं खुद एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और अब हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल की फैसिलिटी तो है नहीं, तो जो स्वगणना चल रही है ये पूरी की पूरी जो है वो डिजिटल माध्यम से है। अब हम जैसे लोग जिनके पास एंड्रॉइड फोन की फैसिलिटी नहीं है, वो अपनी स्वगणना कैसे कराएं?
राजीव जी धन्यवाद, आपको मैं बता दूं ये सगणना एक अतिरिक्त सुविधा है, ठीक है, आप उसके लिए आपको जरूरी नहीं है आप सगणना करें, आप कर पा रहे हैं तो कर ले, अगर नहीं तो एनुमरेटर जैसा पहले भी आए करते थे पुराना सेंसस में, तो इस बार भी आएंगे, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जानकारी दर्ज करेंगे आपसे।
जी हाँ दास जी, जैसे बड़े शहरों में कई मकान हम देखते हैं खाली पड़े हैं, और जो मकान मालिक है वो विदेश में है या रह रहे हैं या गए हैं, तो घर बंद पड़े हैं, तो उन घरों की गणना कैसे की जाएगी?
अगर घर बंद पड़ा है तो उसमें जब हाउस लिस्टिंग करेंगे जो आसपास पड़ोस पड़ोस से पूछ को उसका काउंटिंग कर लेंगे।
अच्छा,
और बाकी कोई अगर विदेश में रह रहा है उसको अगर करना चाहते, सामान्य तरफ से अगर यहीं रहता है पर विदेश से, वो सगणना नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारा जो पोर्टल है जियो रेफरेंस्ड है, वो इंडिया के अंदर ही कर पाएंगे।
अच्छा, अब विदेश से नहीं कर सकते?
नहीं कर पाएंगे।
छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
जी
जी, नमस्कार।
नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
हाँ जी,
प्रश्न ये है, भारत में 2027 में होने वाली जनगणना क्यों आवश्यक है?
जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?
जनगणना बहुत सारे काम के लिए जनगणना किया जाता है। लास्ट 150 साल में जनगणना किए जा रहे हैं। अब जो बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट बनाती है, इसको जनगणना डाटा उसका आधार होती है कि आप जो भी वेलफेयर स्कीम चाहे किसी भी वर्ग के लिए होता है, जनगणना आवश्यक होता है
जी।
जैसा मैं एक एग्जांपल दूं, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए वो जो ये किया था वो जनगणना ही उसका आधार थी, है ना। तो ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम जनगणना डाटा से ही मिल जाता है। हमारा जो विलेज की वार्ड लेवल में जो बेसिक डाटा है वो तो जनगणना से ही मिलती है।
तो हमें पता चलता है कि घर में जैसे जो प्रश्न है, अगर जाना जैसे कितने घरों में शौचालय है, कितने घरों में नहीं है, तो कहाँ कहाँ बेसिक एमेनिटीज की जरूरत है, तो हमें वो जो सरकार को वो जो एक तरह से नीतियां बनानी होती हैं तो उन्हें आसानी हो जाती है, और क्षेत्र के अनुसार, उस जिले के अनुसार, उस गाँव के अनुसार वो अपनी नीतियां बना सकती है। जयपुर से जुड़े हैं दिनेश जी।
हेलो
जी दिनेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
हाँ नमस्कार मैडम।
नमस्कार।
आज जंडियावाला बाग के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, जब शहीद हुए थे
जी
पंजाब के अंदर, उसकी तो आपको सबकी तरफ से श्रद्धांजलि जाती है। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि वैसे तो मैं इस साल रिटायर्ड हो रहा हूँ अप्रैल में, पर नए दिन के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि डाटा इकट्ठा किया जाएगा, तीन दिव्यांगजनों का अलग डाटा रहेगा, इसी कॉमन इसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा।
दिव्यांगजनों के लिए डाटा अलग रहेगा या इसी में शामिल किया जाएगा?
ये जो सेंसस है फेज वन के लिए, ये तो सारे हाउस होल्ड का जानकारी इकट्ठे करते हैं, ठीक है। और जब हम सेकंड फेज के लिए आएंगे तो सारे सबका अलग अलग हर व्यक्ति का हम डाटा लेंगे, उसमें दिव्यांग जन भी शामिल होंगे
जी। इंदौर से जुड़े हैं अनिल जी। अनिल जी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
जी मैडम, हमारा सवाल ये है कि जो जनगणना होगी ये साधारण तरीके से होगी या धर्म जाति के आधार पर होगी?
जनगणना लास्ट बहुत साल से किया जा रहा है, जनगणना जैसे होते आ रहे हैं ऐसा ही होगा। तो इस बार जो हम सेकंड फेज करेंगे उसमें कास्ट एनुमरेशन भी होना है
जी। तो अभी तो फिलहाल जनरल जो जानकारी, सामान्य जानकारी पहले चरण में ली जा रही है, दूसरे चरण में जो जातिगत जनगणना होगी और उससे संबंधित सवाल जो प्रकाशित किए जाएंगे। अगर जैसे पूछा जाए दासी, छोटी छोटी जानकारी जैसे हम करते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है जो हम लेते हैं सेंसस में?
जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है ना। जैसे हाउसिंग कंडीशन लेते हैं, कितना हाउसेस है, कितना कच्चा मकान है, पक्का मकान, कितना हाउसिंग जरूरत है उसके लिए आप ये आकलन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा कहाँ सुविधा है, कहाँ पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, ठीक है, उसके लिए सरकार को कि और कहाँ क्या करने का जरूरत है, इसमें से आकलन कर सकते हैं आप
जी। और इनकेस अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है और बाद में ये पता चलता है कि गलत जानकारी दी है ऐसे किसी व्यक्ति ने, तो क्या प्रावधान है
उसके लिए? हमारा जो सेंसस एक्ट है, सेंसस अधिनियम 1948, उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए सही इन्फॉर्मेशन देना होता है, नहीं तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन भी है, उसमें प्रावधान रखा हुआ है।
तो अगर अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे और इस बारे में अगर पता चलता है तो दंडात्मक कार्रवाई का भी उसमें प्रावधान है। तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीख रखी गई है गणना की?
जी जी हाँ, हमारा सेल्फ इन्फॉर्मेशन पोर्टल है, उसमें हम एक लिस्ट दिया हुआ है कौन सा स्टेट्स में कब सगणना होनी है, कब एनुमरेटर आपका घर घर आएंगे, पूरा लिस्ट पहरा दिया हुआ है।
ठीक है, तो सब पोर्टल पे पता रहेगा कि क्या है। और अगर सवाल अगर जानना चाहूँ तो किस तरीके के जो सवाल है जनरल, तो ताकि जो लोग हैं वो प्रिपेयर रहे जिनकी स्टार्ट होने वाली है।
इसमें जो फर्स्ट फेज में हम जैसा कहा है मकान सूचीकरण, मकानीकरण का ये हो रहा है, इसमें करीबन 34 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो एनुमरेटर भरेंगे, मैं सगणना की बात कर रहा
हूँ जी, स्वगणना।
तो उसमें बाकी जो उनको भरना होता है जैसा हाउसिंग कंडीशन क्या है, फ्लोर क्या है, वॉल क्या है, छत की कंडीशन क्या है, देन उसमें उनमें क्या यूज होता है करेंगे, उनका मकान की कंडीशन क्या है, कितना लोग रहते हैं,
तो
उसका
तो ये जनरल जानकारी ली जाएगी कि मकान की स्थिति क्या है, परिवार की सुविधा क्या है, रहन सहन का स्तर, तो ये सब जानकारी स्वगणना में ली जाएगी और जो आएंगे एन्यूमरेटर उससे आपसे पुष्टि करेंगे। धन्यवाद दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अपने श्रोताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सवाल पूछे। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए विषय के साथ अब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
धन्यवाद प्रियंका।